BBC.
BBC Bollywood Roundup. Bollywood Roundup.
आप पहलू में जो बैठे हैं तो दिल थाम के बैठे, दिले बेताब को आदत है मचल जाने की। आदाब।
दिल खो गया हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का।
दिले बेताब को सुकून कैसे मैसर हो भाई, हमारे आसपास इतने हंगामे और लड़ाई झगड़े जो हैं। फिल्म्स एक ऐसा मीडियम है जो इंसान को कुछ देर के लिए एक खूबसूरत और तसव्वुराती दुनिया में ले जाती हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे फिल्मों से भी मोहब्बत और रोमांस गायब हो चला है। क्यों जावेद साहब?
अरे मेरे दोस्त, जिंदगी से ही रोमांस जा रहा है फिल्मों से क्या? लोग जो है कुछ सब कुछ जल्दी जल्दी चाहते हैं, रोमांस तो इंतजार का नाम है, पाइनिंग।
जैसे मैं करती हूँ।
आपका इंतजार खत्म हुआ क्योंकि मैं यानी नुसरत जहाँ एक बार फिर हाजिर है ढेर सारे प्यार और चटपटी खबरों के साथ बॉलीवुड राउंडअप में।
दिल चोरी सादा हो गया वे की करिए, मैं वो में किसी के खो गया की करिए।
आज बॉलीवुड में सुनिएगा ऋतिक रोशन किसके फैन हैं और परिणीति का ऑस्ट्रेलिया से क्या ताल्लुक है। बॉलीवुड के दूसरे स्टार्स की तरह ऋतिक रोशन की भी एक फैन फॉलोइंग है, लेकिन वो खुद अपने चाचा और म्यूजिक कंपोजर राजेश रोशन के बहुत बड़े फैन हैं।
जी, अपने चाचा का सबसे बड़ा फैन हूँ मैं। दुनिया में सबसे बड़ा फैन हूँ मैं। जूली, कुंवारा बाप से लेकर कहो ना प्यार है और काबिल तक, मुझे मेरे हिसाब से जो मिठास और जो नशा मेरे चाचा के गानों में है वो किसी भी और संगीतकार के गानों में नहीं है। और बचपन में मुझे याद है मैं अपने चाचा का पीछा ही नहीं छोड़ता था।
भाई, चाचा अगर म्यूजिक कंपोजर हैं तो क्या आप भी मौसीकी से कोई दिलचस्पी रखते हैं? और अगर है तो कुछ गा के भी सुनाए।
हो मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के
तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार ना।
आजकल परिणीति ऑस्ट्रेलिया के बड़े गुण गा रही हैं, और क्यों ना हो भाई, काम का मामला है। परिणीति अपने ऑस्ट्रेलिया की हॉलिडे की जो तस्वीर पोस्ट कर रही हैं, उनका मकसद लोगों को ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए अट्रैक्ट करना है। परिणीति ऐसी पहली इंडियन खातून है जिन्हें ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म ने फ्रेंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया नामी पैनल का एम्बेसडर बनाया है। लेकिन ये बताएं कि आपको वहाँ सबसे अच्छा क्या लगा?
I came back with 4 boxes of chocolate coated biscuits and they are just the tastiest thing on earth. So I brought 4 boxes and is baar jab main jaungi main 16 boxes leke aane wali hu.
Mana ki hum yaar nahi.
Are ho saama, ye ramgarh wale apni betiyon ko kaun chakki ka pisa aata khilate hain re? Kabar! अब आएगा मजा खेल का।
ये वो हैं जिनका एक ही कारनामा उन्हें बॉलीवुड की तारीख का हिस्सा बनाने के लिए बहुत है। यूं तो उन्होंने कई फिल्में बनाई हैं, लेकिन इस एक फिल्म ने उन्हें बॉलीवुड के लेजेंड्स में ला खड़ा किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म साज रमेश सिप्पी की।
महबूबा, महबूबा, महबूबा।
फिल्म साज जेपी सिप्पी के साहबजादे रमेश सिप्पी यूं तो फिल्मों में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर अपने पापा के साथ काम किया करते थे, लेकिन 1971 में उन्होंने अंदाज फिल्म के साथ अपना खुद का करियर शुरू किया।
जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, अरे उड़ने
ज्यादा कामयाब नहीं रही, लेकिन 1972 में फिल्म सीता और गीता ने उन्हें जबरदस्त कामयाबी दिलाई।
हवा के साथ साथ घटा के संग संग ओ साथी चल,
मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू।
1975 में उन्होंने फिल्म शोले डायरेक्ट की, जो बॉलीवुड की तारीख की उस वक्त तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। तो जब फिल्म रिलीज हुई तो उन्हें अंदाजा था कि फिल्म इतनी बड़ी हिट होगी?
वो तो पहले तो ये एहसास हुआ कि नहीं चली। ऐसे लोगों ने, पंडितों ने, फिल्म के पंडित जो हैं, उन्होंने कुछ ऐसे कहा कि ये फिल्म तो चलेगी नहीं, और चली नहीं। उन्होंने ऐलान कर दिया कि चली नहीं, कि जो भी कॉन्फिडेंस था हमारा थोड़ा सा हिल जरूर गया, मेरा तो हिल गया। जब फिर जाकर वापस फिल्म देखी ऑडियंस के साथ, उनके वर्डिक्ट को मानने के लिए हम तैयार नहीं थे। जिस तरह लोग बैठे थे हॉल में, बिल्कुल स्तंभ हो गए थे। इसका मतलब कुछ लोगों ने निकाला कि कोई रिएक्शन ही नहीं है लोगों की। वक्त ने तो बतला ही दिया कि भाई बहुत बड़ी हिट है, लेकिन आज तक हमें नहीं समझ में आता कि कितनी बड़ी है। रोज़ उसके बारे में जिक्र होती है, तो उसको कैसे समझाया जाए? गोल्डन जुबली या डायमंड जुबली या 100 हफ्ते का क्या, अगर 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अब क्या सेलिब्रेट करें हम?
क्योंकि ये कौन बोला? चल
फिल्म शोले ने रमेश सिप्पी को जो नाम और कामयाबी दिलाई, वो उनकी दूसरी कोई फिल्म नहीं कर सकी। इस फिल्म के अलावा उन्होंने शान और शक्ति बनाई, लेकिन दोनों ही फिल्में दरमियाने दर्जे की रही।
दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से बदला लिया, जो भी किया हमने किया शान से।
तो शोले फिल्म की कोई खास बात जो रमेश सिप्पी को आज भी याद हो?
ये दोस्ती के गाने में मोटरसाइकिल अलग हो गई साइड कार से और फिर आके वापस जुड़ी। इसके लिए सेंस ऑफ टाइमिंग एक बहुत बड़ी चीज होती है। कैसे उन्होंने टाइम किया, किस स्पीड से मैं आऊं कि जब कैमरा के सामने सही आकर बैठूं और दोनों साथ जुड़ जाएंगे। बहुत ही आसान लगता है स्क्रीन पे, लेकिन बहुत ही मुश्किल शॉट था। उन्होंने इतने परफेक्शन के साथ किया कि पहला टेक ओके हो गया।
में उन्होंने इंडियन टीवी के लिए ड्रामा सीरियल बुनियाद बनाया, जो बहुत कामयाब रहा। शोले के बाद रमेश सिप्पी ने जो भी फिल्में बनाई, लोग इन फिल्मों से शोले जैसी कामयाबी की तवक्को करने लगे।
तुम्हारा नाम क्या है बसंती?
चुप है, जब देखो बकबक 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 करता रहता है।
पहली बार सुना ये नाम।
बसंती बड़ा प्यारा नाम है।
तो शोले की ये तारीखी कामयाबी उस वक्त आपको कैसी लगी?
मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, किसी को ये नहीं पता था कि उसका जिक्र उसी तरह होगा जैसे पहले दिन हुआ। उसके बारे में वो एक ऐतिहासिक फिल्म बन जाएगी और उसके डायलॉग आज भी लोग दोहराते हैं कहीं ना कहीं, किसी शो पे, किसी फिल्म में, किसी प्ले में, किसी एड में, कहीं ना कहीं उसका जिक्र होता ही है। ये सब ऊपर की देन है, लिखने वालों और कलाकारों की कमाल है।
नहीं! बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, सांभा!
चम्मक चलो, जब तक तेरे पर चलेंगे उसकी सांस चलेगी।
इसके बाद रमेश सिप्पी ने 89 में भ्रष्टाचार और 95 में जमाना दीवाना बनाई। दोनों ही फिल्में नाकाम रहीं। इसके बाद उन्होंने फिल्में डायरेक्ट करने के बजाय अपने बेटे रोहन सिप्पी की फिल्मों को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया।
अरे जाने कैसे कब कहां इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया।
रमेश सिप्पी के बाद बात करते हैं उस फिल्म की जो बेपनाह हंगामों और प्रोटेस्ट के बाद आखिरकार रिलीज हो ही गई। हाँ, फिल्म पद्मावती जैसे तैसे सिनेमा घरों तक पहुंची और लोगों ने देखी भी।
चिंता को तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत, रेत की नाव लेकर समंदर से शर्त लगाए वो राजपूत, और जिसका सर कटे फिर भी धड़ दुश्मन से लड़ता रहे वो राजपूत।
साथ ही हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णब बैनर्जी भी फिल्म देखने गए। तो अर्णब, फिल्म कैसी लगी आपको?
फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इतना बड़ा वाद विवाद खड़ा हो गया था। संजय लीला भंसाली की हर फिल्म जो होती है बहुत ही लैविशली माउंटेड होती है, बहुत चीज़ एक्सेस में होती है, यानी सेट्स कह दीजिए, कॉस्ट्यूम्स कह लीजिए, हर चीज़ जो है वो बहुतायत में दिखाते हैं। पद्मावती के रूप में दीपिका पादुकोण बहुत खूबसूरत लगी हैं। रणवीर सिंह जो हर चीज़ हासिल करना चाहते हैं, हर खूबसूरत चीज़ पाना चाहते हैं, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही है कि वो किसी तरह पद्मावती को पालें। शाहिद कपूर तो बिल्कुल भी जचे नहीं है, वो छोटे भी लगते हैं। फिल्म में दिल होना बहुत ज़रूरी है, यानी हार्ट बहुत ज़रूरी है। इमोशंस के तौर पर कई चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो दिल को छुएं। साथ ही इसमें पद्मावती और 800 जो उनकी रानियां हैं जौहर करती हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि संजय लीला भंसाली चूक गए हैं, क्योंकि उन्होंने जौहर को कहीं ना कहीं ग्लोरीफाई किया है।
इस हफ्ते का बॉलीवुड राउंड अप अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत और रखिए अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
ढोला वाले ठाम पे घूमर 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 घूमे।
बीबीसी बॉलीवुड राउंड अप। बॉलीवुड राउंड अप।